हरि गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारि जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारि जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारि यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारि जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारि जन वल्लभ गिरिवर Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. होके राम हरे राम 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 हरे राम ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं साभिधारय भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये मांसाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसुधि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय from Bhagavad Gita. We'll read a भगवान की दो प्रकार की कथाएं होती है, एक भागवत कथा और दूसरी भगवत गीता कथा। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं भगवान के संबंधित कथा एक प्रकार और भगवान के वचन भी एक कथा है। तो गीता जयंती के उपलक्ष्य में आज प्रातःकाल हम गीता जी का स्मरण करेंगे। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलं अधःशाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलं अधःशाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलं अधःशाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलं अधःशाखं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान उवाच मूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। शाखम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान उवाच
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्।
और कृष्ण कुमारी संस्कृत है श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा ऊर्ध्वमूलम ऊपर की ओर जड़े अधः नीचे की ओर शाखम शाखाए अश्वत्थम अश्वत्थ वृक्ष को प्राहु कहा गया है अव्ययम शाश्वत छंदांसी वैदिक स्तोत्र यश जिसके पर्णानि पत्ते यह जो कोई तम उसको वेद जानता है स वह वेदवित वेदों का ज्ञाता। अर्जुन ने कहा भगवान ने कहा कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़े तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। श्री भगवान उवाच। तो ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा शाखम ये संसार का वर्णन है। संसार के संबंधित ये ज्ञान है। संसार को एक वृक्ष के साथ उसकी तुलना कुछ अलंकृत भाषा में भगवान समझा रहे हैं। तो ये वृक्ष संसारिक वृक्ष है। कैसा वृक्ष है? अश्वत्थ अश्वत्थ पीपो बनियान ट्री वगैरह न्यग्रोध ऐसे भी नाम आते हैं भागवतम में। ऐसा ये वृक्ष है अश्वत्थ ट्री। किंतु है अद्भुत ये वृक्ष क्योंकि इसकी जड़े ऊपर की ओर ऊर्ध्व ऊर्ध मतलब ऊपर मूलम इसका मूल जड़ तो ऊपर की ओर और अधः नीचे शाखम ये वृक्ष दूसरे शब्दों में उल्टा वृक्ष है। एक वृक्ष तो सुलटा है वो आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत भी एक वृक्ष तो वो तो सीधा है
सुलटा है, नॉर्मल है, तो वो सुलटा है तो उसकी ये संसार छाया है, प्रतिबिंब है, तो उस सुलटे वृक्ष का ये संसार एक उल्टा वृक्ष के रूप में, जैसे प्रभुपाद श्री प्रभुपाद समझाते हैं इस तात्पर्य में, किसी तालाब के किनारे आप ऐसा अनुभव कर सकते हो, तालाब के किनारे जो वृक्ष होते हैं वो तो सुलटे होते हैं, उनका जो प्रतिबिंब आप तालाब में देखोगे तो उल्टा होता है, उल्टा होता है, उसकी जड़ ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर। अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम्, किंतु है ये अव्यय है, सनातन है, सदा बना रहता है ये वृक्ष या ये संसार। छंदांसि यश पर्णानि, तो वृक्ष है तो पर्ण पत्ते भी तो होने चाहिए, इस वृक्ष के पत्ते है छंदांसि, जो वेद है वे इस वृक्ष के पत्ते हैं, जिस पर आप पढ़ सकते हो। पहले जो लिखे जाते थे वेद पुराण, उसकी पांडुलिपि इत्यादि, वो लिखा जाता था पर्ण, पर्णों पर लिखते थे। चैतन्य महाप्रभु को भी जो ब्रह्म संहिता प्राप्त हुई 500 वर्ष पूर्व हुई, ब्रह्म संहिता को प्राप्त किए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, वो लिखा था पर्ण पर लिखा था। तो छंदांसि यश्च पर्णानि, तो संसार भी है और इस संसार संबंधित ज्ञान भी उपलब्ध कराए भगवान, इस संसार की सृष्टि किए और इस संसार के संबंधित ज्ञान को उपलब्ध कराए भगवान। जैसे ये बनता है माइक्रोफोन बनता है, उसके साथ उसका उसके संबंधित मेन्यू, उसकी बिक्री होती है, उसको ऐसे साथ में आ जाता है, टैग लगा होता है, तो प्रोडक्ट खरीद लिया उसके संबंधी सारी गारंटी वारंटी प्रिकॉशंस, कोई नियमावली, हाउ टू हैंडल, कैसे खोलना है, कैसे डिसमेंटल असेंबल कैसे करना है, ये सारा ज्ञान मिलता है। जब प्रोडक्ट बनता है उसकी बिक्री होती है वितरण होता है, तो इसी के साथ वो जानकारी उपलब्ध होती है। तो छंदांसि यश्च पर्णानि, भगवान ने वैसा ज्ञान भी उपलब्ध कराया है। यस्तम वेद सवेदवित्, तो जो जानता है इस ज्ञान को, जो जानता है वेदों को, जो जानता है वो वही जानता है, जानकार तो वही है जो इन वेदों को जानता है। इस पर व्याख्या किए हैं श्रीधर स्वामी, वे लिखते हैं, श्रीधर स्वामी नामक एक महान आचार्य हुए, कोई 700-800 वर्ष पूर्व की बात है, उन्होंने इस गीता के हर श्लोक पर भाष्य लिखा है, टीका है, तो वे लिखते हैं ऊर्ध्वम उत्तमः, कहते ऊर्ध्वम मतलब उत्तम, ऊर्ध्वम एक एक शब्दार्थ तो हुआ ऊपर, इसका और गूढ़ अर्थ और जो ध्वनित अर्थ उसको समझाते, ऊर्ध्वम उत्तमः, ऊर्ध्वम मतलब उत्तम, क्षर अक्षराभ्याम उत्कृष्टः। इसी अध्याय में भगवान क्षर और अक्षर की बात करेंगे, कुछ जीव क्षर है कुछ अक्षर है, तो क्षर अक्षराभ्याम उत्कृष्ट, तो क्षर और अक्षर के परे उनसे भी उत्कृष्ट पुरुषोत्तमः मूलम यशतम। तो यह ऊर्ध्वम मतलब उत्तमः, जिसको मूल भी कहा ऊर्ध्वमूलम, तो ऊर्ध्वमूलम उस वृक्ष की जो जड़े है मूल है, एक अर्थ हुआ, लेकिन सभी संसार के आध्यात्मिक या इस भौतिक संसार की जड़ तो मूल तो भगवान है, अहम सर्वस्य प्रभवः भगवान है का, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। तो इस संसार वृक्ष का के मूल कौन है, ऊर्ध्व मूलम ऊपर वाला भगवान कहां होते, सबका मालिक एक ऊपर, तो ऊर्ध्वम, तो केवल इस वृक्ष के जड़ मूल ही ऊपर नहीं है, लेकिन उसके ऊर्ध्व मूलम उसका मूल उसका सोर्स स्रोत पुरुषोत्तम, यश्यतम और वो तम है, यस्तम वेद स वेद वित्त जो कहा है, तम मतलब यह भगवान, तो उनको जो जानता है वही जानता है वही जानकार है। अधः इति ततः अर्वाचिनः कार्य उपाधय हिरण्य गर्भ आदया ग्रह्यन्ते। तो ऊर्ध्व मूलम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हुए, तो शाखा भी कहा है शाखा, तो शाखा कौन है, ततः अर्वाचिनः, पहले ऊर्ध्व मूलम है, वे हो गए प्राचीन, प्राचीन के बाद फिर अर्वाचीन होते हैं, या प्राचीन से उत्पन्न होता है अर्वाचीन, अर्वाचीन उत्पन्न होते हैं, तो अर्वाचिनः हिरण्यगर्भ आदया, ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र वरुण आदया एटसेट्रा, ये सारे अर्वाचीन है, जो वृक्ष का प्राचीन तो पहले तो क्या होता है जड़ होता है मूल होता है, फिर अर्वाचीन बाद में क्या उत्पन्न होता है उसकी शाखाएं उत्पन्न होती है, तो पहले है भगवान पुरुषोत्तम और बाद में उनसे उत्पन्न हुए ब्रह्मा आदया हिरण्यगर्भ आदया। नारायणो आसित, पहले नारायण थे फिर उनसे ये उत्पन्न हुए, इंद्रो जायतः, श्लोक है अष्टादश कौन वसु एकादश रुद्र उजायत, ऐसा ऐसा एक श्लोक है। तो प्रारंभ में थे भगवान और फिर उनसे उत्पन्न हुए अलग अलग देवता। तो प्रारंभ में प्राचीन मूल है और अर्वाचीन है उसकी शाखा है देवता।
विनश्वरत्वेन स्वः प्रभात पर्यन्तमपि स्थास्यति इति विश्वास अनर्हत्वात् अश्वत्थं प्राहुः।
श्रीधर स्वामी ये जो अश्वत्थम है, अश्वत्थम अश्वत्थम तो अश्वत्थ वृक्ष हुआ, पीपल का पेड़ हुआ, उसके साथ इस संसार की तुलना की है तो ये एक अर्थ हुआ, शब्दार्थ हुआ या प्रचलित अर्थ हुआ। लेकिन अश्वत्थ का वे दूसरा अर्थ निकालते हैं, अ मतलब नहीं, अश्व मतलब कल टुमोरो और स्थ अश्वत्थ। तो स्वप्रभात पर्यंतम, स्व कल के प्रभात पर्यंतम अपि न स्थास्यति। अब जिस स्थिति में संसार है, जो आज की अभी परिस्थिति है, कल प्रातःकाल तक टिकने की भी कोई गारंटी नहीं है, कोई नहीं कह सकता गाइस अब जैसी स्थिति है, जैसा संसार है, वैसा ही कल प्रातःकाल तक रहेगा, ऐसा कोई कुछ दावे के साथ कह सकता है? इसीलिए इस संसार को कहा है अश्वत्थ, अश्वत्थ। मतलब परिवर्तनशील, ये जग कैसा है, परिवर्तनशील, एवर चेंजिंग। एक समय मैंने सुना कुछ विवाद हो रहा था, कोई डिबेट चल रहा था, इस संसार में परमानेंट बात कौन सी है, परमानेंट जो परिवर्तन नहीं होने वाली बात कौन सी है। तो खूब चर्चा हुई और निष्कर्ष ये निकाला कि द चेंज इज परमानेंट। इस जगत में जो चेंज होता रहता है, चेंजिंग चेंजिंग, ये परमानेंट है। तो वो यहां भी अश्वत्थ इस शब्द के साथ समझाया है। तो इस संसार को प्राहु कहा है, प्राहु कहा है, कहा जाता है। ये संसार कैसा है, अश्वत्थम और अव्ययम। संसार के संबंध में दो विशेषण विशेषणों का प्रयोग है। संसार विशेष्य है, उसके दो विशेषण है यहां, और एक है अश्वत्थ और दूसरा है अव्ययम। अश्वत्थ तो अभी समझाया, अश्वत्थ कल पर्यंत भी रहने का कोई भरोसा, टिकने का कोई भरोसा नहीं है। और अव्ययम क्यों कहा है इस संसार को, तो वे लिखते हैं प्रवाह रूपेण अविच्छेदात अव्ययम च प्राहु। जगत परिवर्तनशील है, लेकिन इस जगत का प्रवाह तो बना रहता है, भव प्रवाह, भव प्रवाहो परमम, कुंती महारानी ने भी कहा है। एक जगत, ये जगत कैसा, जगत प्रवाह, जगत का प्रवाह है, बहते रहता है। तो आज की स्थिति कल तक बनी नहीं रहेगी, लेकिन किसी न किसी स्थिति में जगत कल भी होगा और परसों भी होगा और बना रहेगा। नदी जब बहती है तो वह उसकी तरंगे छलांग मारती हुई या आगे बढ़ती रहती है, ऊपर की जल के बिंदु नीचे जाते हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे आ सकते हैं जल के बिंदु, कोई गोल गोल जा सकते हैं, राउंड एंड राउंड, भवरा जैसा स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन ये सब हो तो रहा है, कई सारे चेंजेस है, परिवर्तन है उस प्रवाह में, लेकिन प्रवाह तो बना रहता है, आगे बढ़ता रहता है। अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम्, कठोपनिषद का एक उद्धरण में दे रहे हैं, ऊर्ध्वमूलः अवाच्य शाखा एषा अश्वत्थः सनातनः। तो ऊर्ध्वमूल इस वृक्ष का अश्वत्थ है सनातन, अश्वत्थः सनातनः, यह का अश्वत्थ ऐसा है अव्यय कहा है। तो कठोपनिषद में कहा है, सर्वोपनिषदो गाओ, ये भगवत गीता वैसे इसका स्रोत है उपनिषद, इस गीता को गीतोपनिषद भी कहते हैं। तो वह वही उसी प्रकार की भाषा है, उपनिषद जैसी भाषा भगवत गीता में भी है। और उपनिषद मतलब उपनिषद में भी संवाद होते हैं, गुरु शिष्य के संवाद पाए जाते हैं उपनिषदों में। और उपनिषद मतलब उप पास निषद बैठ के, गुरु के चरणों में बैठ के जो संवाद हो और उस संवाद में जो ज्ञान प्राप्त किया जाए वो उपनिषदों का ज्ञान। तो इस गीता उपनिषद में भी ऐसा संवाद है, अर्जुन और केशव के मध्य का यह अद्भुत संवाद है, पास में है अर्जुन कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरु उनके पास है। और उपनिषद जैसी भाषा कोड लैंग्वेज सूत्र रूप में है। तो ये महाभारत का ही अंग, लेकिन महाभारत में जो कथानक है, कथाएं है, भगवत गीता में कथा नहीं है, टू द पॉइंट बिजनेस टॉक है इसमें, मिर्च मसाला और ये उदाहरण, ये कहानी, ये लीला हो ऐसा, और समय भी तो नहीं था ऐसा, रिलैक्स टाइम तो नहीं था, सेना और उभयोर मध्य चल रहा था, दोनों सेना के मध्य में संवाद चल रहा था, शंख ध्वनि हो चुकी थी, कृष्ण माधवा पांडवश चैव दिव्यौ शंखो प्रदद्मतु, उन्होंने शंख ध्वनि भी की थी और पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय, और भगवान ने जो शंख ध्वनि की थी वो शंख था पांचजन्य, और अर्जुन ने भी शंख बजाया देवदत्त, फिर पौंड्रक बजाए हमारे भीम, और कौन से अनंत विजय, और आगे तो पांचों पांडवों ने जो शंख बजाए हैं उनके नाम भी दिए हैं। शंख ध्वनि हुई है मतलब चुनौती दे चुकी है, तैयार हो जाओ, गेट रेडी, तो अभी यह तो हुआ, सारा महाभारत सुनाने का, रामायण सुनाने का तो समय नहीं था। तो हुआ संक्षिप्त में, सत्य को सूत्र रूप में भगवान सुना रहे हैं। तो अश्वत्थ सनातना, कठोपनिषद में कहा है, तो ऊर्ध्वमूल ये जो श्लोक है उसे भगवान कह रहे हैं 15वें अध्याय में, भगवत गीता के 15वें अध्याय में। वो पहले कठोपनिषद में वचन आया है, उसी को भगवान दोहरा रहे हैं, दूसरे शब्दों में कह रहे हैं। भाव वही है, भाव क्या वो वही बात है, संसार का वर्णन और कैसा है संसार। अवाक्शाखा ईशा अश्वत्था सनातन, तो इसकी शाखा नीचे की ओर है, ऊर्ध्वमूल है और ये अश्वत्थ सनातन। छंदांसी मतलब वेद, छंदांसी यश पर्णाणी मतलब वेद, वेद इसके पर्ण है, वेदों को छंदांसी कहा है, वेद अलग अलग छंदों में लिखे गए हैं, या शास्त्रों में अलग अलग छंद, गायत्री भी एक छंद है, भगवद गीता में अनुष्टुप छंद है, शार्दुल विक्रीडित छंद है, कई सारे अलग अलग छंद है, अनुष्टुप छंद हो गया। तो कितने अक्षर से एक एक पद बना है उसे छंद, आठ अक्षर वाला पद होता है, 11 वाले होते हैं, 14 वाले होते हैं, 16 वाले होते हैं, 21 वाले होते हैं, एक एक पद में कितने अक्षर है, और कौन सा गुरु है, कौन सा लघु है उच्चारण के दृष्टि से, ये सब का विचार होता है उसमें, और छंद बनते हैं छंद। तो छंदांसी यश पर्णाणी, तो छंदांसी वेद यश पर्णाणी, तो इन छंदों में वेदों में क्या है, धर्म अधर्म प्रतिपादन द्वारे न छाया स्थानीय, तो जैसे वृक्ष, वृक्ष के पत्ते छाया प्रदान करते हैं, जो भी प्रवासी बैठेंगे उस वृक्ष के नीचे, तो इस संसार में ये जो वेद है, ये शास्त्र है, ये भी छाया देते हैं मनुष्य जाति को, मनुष्यों को छाया प्रदान करने वाले ये वेद है। छाया स्थानीय, संसार वृक्षस्य सर्व जीव आश्रयणीयत्वम् अपादानात् पर्णस्थानीय वेदः, और आश्रय प्राप्त होता है सब जीवों को, सब जीवों का आश्रय स्थान ये वेद है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, वेदांत सूत्र है, भगवद गीता है, श्रीमद् भागवत है, ऐसे छाया प्राप्त होती है, इसे आश्रय प्राप्त होता है जीवों को, इससे रक्षा होती है जीवों की। वेद धर्म है, यहां कहा है धर्म अधर्म, या यश पर्णानि धर्म अधर्म प्रतिपादन द्वारेण, तो हमारे शास्त्रों में दो प्रकार के विधि विधान है, या एक विधि है एक निषेध है, ये करो ये मत करो, यम नियम है। यम नियम से विधि निषेधों से भरे हैं हमारे ग्रंथ, या दो ही प्रकार है, एक विधि एक निषेध, एक यम है एक नियम है, एक धर्म है दूसरा अधर्म है। तो धर्म अधर्म प्रतिपादन द्वारे न छाया स्थानीय, तो बता ये करो ये मत करो, इससे रक्षा होती है, आ मत जाओ रक्षा होती है, ये खाओ ये मत खाओ, या इनकी पूजा करो, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराध्यते परम कहा, ये विधि हुई। और कामैस्तैस्ते ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, भगवान कहते हैं यहां कुछ लोग तो अन्य देवता की शरण में आते हैं, लेकिन वे काम वासना से प्रेरित होते हैं, इसलिए देवताओं के पास जाते हैं। कामैस्तैस्ते ऋतज्ञाना, तो भगवान ने उसमें कोई प्रसन्नता व्यक्त नहीं की है, अन्य देवता और दूसरे द्वार पर जाते हैं। कामैस्तैस्ते ऋतज्ञान रहित जो होते हैं, मायया अपरित ज्ञान, माया जब ज्ञान को चुरा लेती है उस स्थिति में लोग कहां जाते हैं, देवताओं के पास जाते हैं। तो जो काम वासना है वो चुरा लेता है, बुद्धि को भ्रमित करता है, फिर बुद्धि विपरीत हो जाती है, फिर विनाश का समय आता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो भगवान काम उसकी बुद्धि को चोरी कर लेता है, तो व्यक्ति जब बुद्धू बनता है, बुद्धिहीन होता है, तो उस स्थिति में कहा जाता है प्रपद्यन्ते अन्य देवता, फिर अन्य देवताओं के पास जाता है। किंतु किसी के पास ज्ञान है, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ऐसा भगवान भेद बताते हैं, विधि निषेध उचित अनुचित, आराधना उपास्य देवता को चुनना, उसके संबंध में यह इस गीता में समझा रहे भगवान। तो सचमुच जो ज्ञानी है बुद्धिमान है माम प्रपद्यते, लेकिन काम क्रोध लोभ से प्रभावित है प्रेरित है, तो उनका ज्ञान तो चुरा लिया गया फिर। सो ऐसे अज्ञानी फिर देवता के पुजारी बन जाते हैं। इस प्रकार धर्म अधर्म इसी को भगवान कहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज, इसी भगवत गीता। आहा देवता की पूजा भी एक धर्म का अंग तो है, किंतु वह सर्वोत्तम विधि तो नहीं है। तो धर्म अधर्म प्रतिपादन द्वारेण छाया स्थानीय, यतम एवं भूतम अश्वत्थम वेद स एव वेदार्थवित। तो इस प्रकार जो हुआ इस संसार को समझता है, अश्वत्थ को समझता है, इसका मूल क्या है, इसका मूल में भगवान है, इसकी शाखाएं देवता है, और इसके जो छंदांसी यश पर्णाणी, इसके जो पत्ते हैं, ये वेद है। जैसे कोई प्रोडक्ट हम खरीदते उसके साथ ही उसका टैग या जुड़ा होता है, बांध के रखते हैं, अपने प्रोडक्ट ले लिए तो उसके साथ आ गए आप सब। तो पत्तों के रूप में भगवान ने वही जोड़ दिया टैग। इसको पहले पढ़ो तो उस प्रोडक्ट को हैंडल करने के पहले, उसका उपयोग करने के पहले, उसको खोलने के पहले क्या किया जाता है? उसको पढ़ते हैं, मैन्युअल को खोलते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। उसी प्रकार संसार के साथ व्यवहार करने के पहले, उसके साथ डील करने के पहले उसको क्या करना चाहिए? उसके साथ जुड़ा हुआ जो टैग है, जो मैन्युअल है, उसको भली भांति उसका स्टडी करना होगा, फिर संसार में उतर सकते हैं। नहीं तो खतरे में आ जाएंगे हम। उस चक्र व्यूहों में भी जब उतरना था, प्रवेश करना था अभिमन्यु को, जहां तक उनको ज्ञान था तो प्रवेश करते गए, जीत होती रही, जो भी आए शत्रु उनको परास्त करते गए। लेकिन फिर ने जो भी सुना था, पहले ज्ञान प्राप्त किया था साक्षात कृष्ण से ही, आप जानते हो ना, सुभद्रा के गर्भ में जब अभिमन्यु थे तो भगवान रथ को हांक रहे थे, अपनी बहन जी को ले जा रहे थे, गर्भवती थी सुभद्रा। तो कृष्ण राजा है, द्वारकाधीश है, तो कुछ सुना रहे थे अलग अलग युद्ध में जो रचनाएं होती है, सेना की रचनाएं होती, चक्रव्यूह नामक एक सेना की रचना है, उसको सुना रहे थे। तो वह और सुभद्रा सुन भी रही थी। ऐसा उनको प्रोत्साहित भी कर रहे थे, हाँ मैं सुन रही हूं, हाँ सचमुच, तो रथ चल रहा था तो गर्भवती स्त्रियां थोड़ा नींद आ जाती है अधिक थोड़ी, ऐसा सुनने में आता है, तो मैंने तो वो सो गई। किंतु भगवान आगे रथ भी हाँक रहे थे और सुना भी रहे थे, और पीछे से चल रहा था। तो मैंने वो सोच रहे थे कि वो सुभद्रा सुन रही है, तो सुनाते गए। लेकिन इस समय उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो सुभद्रा का चल रहा था। तो फिर भगवान ने वो जो वर्णन था चक्रव्यूह सेना की रचना का, वहीं पर रोक लिया। तो अभिमन्यु को कुछ आधा ही ज्ञान प्राप्त हुआ, तो जितना सुना था उन्होंने, अभिमन्यु ने कुरुक्षेत्र के मैदान में उसका उपयोग किया। लेकिन ऐसा समय आया कि फिर वो टेप जो रिकॉर्डिंग हुआ था, फिर आगे तो ब्लैंक ही था, आगे कुछ था ही नहीं। तो एक कदम आगे बढ़े तो फिर आगे बढ़ नहीं पाए, स्वयं पराजित हुए और अपने जीवन को खो बैठे. तो हैफ नॉलेज इज अ डेंजरस, कहते हैं अधूरा ज्ञान. लेकिन ज्ञान ही नहीं है तो फिर वो कितना डेंजरस. अधूरा है तो डेंजरस, लेकिन जीरो ही है, ज्ञान ही नहीं है तो कितना खतरनाक. तो छंदांसि यश्च पर्णानि, इस संसार में प्रवेश के पहले ज्ञान अर्जन अनिवार्य है. तो एक समय तो ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी, छोटे बालक इनको पढ़ाया जाता था. ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांतो गुरोर हितम चलता था. गुरुकुल में जाते थे छोटे छोटे बालक और अध्ययन करते. बड़े होने के पहले, संसार में प्रवेश करने के पहले, पहले ज्ञान अर्जन होता था. वेदों को पहले पढ़ लेते, समझते, शंका समाधान होता. नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा त्वत्प्रसादात् स्थितोऽस्मि गत संदेह. फिर प्रवेश करते संसार, करिष्ये वचनम, तो फिर तैयार हो जाते. तो छंदांसि यश्च पर्णानि, तो संसार तो केवल वृक्ष को चाहता है और उसके जो पर्ण है क्या करता है, काट के कहीं फेंक देता है. उसका टैग है फेंक दिया, उसका मैन्यूअल का पता ही नहीं है. फिर वो वायरिंग करेगा, कुछ कनेक्ट करता, शॉक लग सकता है, कुछ सारा सिस्टम ही जल सकता है. या खुद ही उसमें जल जाएंगे. तो इस श्लोक में भगवान को ज्यादा नहीं बोलते, संक्षिप्त सूत्र रूप में बोलते हैं. इसीलिए हमें भक्तों के मदद से, आचार्यों के मदद से इनको समझना पड़ता है. सारी कहानी सारा विस्तार से अगर समझाया होता तो शायद कुछ समझ भी जाते कुछ. किंतु ये जो भाषा, वैसे भगवान की भाषा तो भक्त ही समझ सकता है. भक्तो उसी में सखा चैति तदही रहस्य उत्तमम. भगवान की भाषा बड़ी रहस्यमयी है और उत्तम है. उत्तम, उत्तम मतलब तम से परे है. उत्त मतलब ऊपर, तम उत्तम, तम से परे है. तो जो तम में लिप्त है, तम तम रज सत्व रज तम, और कलयुग में तो तम का ही प्राधान्य है. तम तमोगुण, तो तमोगुणी व्यक्ति के लिए कि उत्तम बात समझना में आना कठिन. तो जो जो समझते हैं, समझे हैं भगवान के वचनों को, भगवान के भाव को, भावार्थों को, उनकी मदद से किसी ने कहा कि भगवान कहते कि ये जो संदेश मैं कह रहा हूं ये बड़ा गोपनीय है, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, राज विद्या राज गुह्यम इत्यादि जगह जगह पर कहा है. कॉन्फिडेंशियल मोर कॉन्फिडेंशियल मोस्ट कॉन्फिडेंशियल. लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल होते हुए भी पब्लिक में अवेलेबल तो है. आप हरे कृष्ण वाले तो इतना सारा वितरण भी करते रहते हो चौराहे पर ही उसका डिंडोरा पीटते हो. कॉन्फिडेंशियल है किसी के कान में कुछ कहते हैं आप कॉन्फिडेंशियल. यस कॉन्फिडेंशियल. आप तो कॉन्फिडेंशियल कहां रखते हो. आप तो प्रिंटिंग में आ गया उसका मैस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. वेयर इज द कॉन्फिडेंशियलिटी. तो इसका उत्तर ये है वैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया छप गया उसका वितरण भी हो रहा है और कोई पढ़ भी रहा है वैसे वो समझेगा नहीं. उसके सामने है समक्ष है एबीसी या क ख ग घ पढ़ लिया है. कृष्ण कुमारी तो मुश्किल से पढ़ रही थी लेकिन लोग लिखे पढ़े हैं पढ़ भी सकते हैं. लेकिन पढ़ने के उपरांत भी भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है सभी नहीं समझेंगे सभी समझ नहीं पाएंगे. तो क्या फिर कैसे समझे. तो या तो फिर हमें भक्त की सहायता लेनी होगी जो समझे हैं. वैसे हमने भगवान की शरण में आना होगा. ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य. भगवान कहते जो जितनी मेरी शरण में आता है उतना मैं भी उसको प्रकट होता हूं उसको भी मैं भी उसको भजता हूं. वो मुझे भजता है तो मैं भी कुछ कम नहीं हूं मैं भी उसको भजता हूं. तांस तथैव भजाम्य अहम भजामी ताम. भगवान कहते कोई मुझे भजता है तो मैं भी उनको भजता हूं मैं भी उनको स्वीकार करता हूं मैं भी उनसे प्रेम करता हूं मैं भी उनकी सहायता करता हूं. तो आदान प्रदान की बात कर. ऐ हो राधा गोपीनाथ की जय. तो आपने नमस्कार किया भगवान को सब कर रहे थे तो फिर आपको गीता समझ में आएगी. गीता समझ में नहीं आ रही तो क्या करो भगवान को दंडवत ठोको फिर पुनः पढ़ो और थोड़ा समझ में आएगा. नहीं समझ में आ रहा तो पुनः टकराओ पटक दो अपना सिर भगवान के समक्ष. मतलब सिद्ध करो कि आप शरण में आए हो और जानना चाहते हो भगवान का संदेश तो और समझ में आएगा. फिर भक्तों के पास जाओ ये शरणागति के लक्षण है. भगवान की शरण भगवान के भक्तों की शरण उनकी सहायता अगर हम लेंगे और भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. जो कहा है भगवान ने गीता में कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रतः. भक्त क्या करेंगे मेरा कीर्तन करेंगे. तो कीर्तन जब करेंगे उसी के साथ हम थोड़े निर्मल होंगे. उस निर्मल अवस्था में फिर हम भगवान को अधिक जान सकते हैं. तो पढ़ो, मैंने अभी श्लोक तो याद नहीं है, लेकिन मैंने सुना कि चार कुछ बात को समझना है तो चार बातें आवश्यक है। एक तो गुरुजनों से सीखो, एक बात है। फिर स्वयं उसका अध्ययन करो, जो सिखाए हैं उसका होमवर्क करो, स्वयं भी पढ़ो, पुनः पढ़ो। तीसरी बात है आपके जो कलीग है, कलीग समझते हैं, आपके जो साथी है, सहयोगी है, उनकी मदद लो, तीसरी बात होगी। और चौथी बात है समय की बात है, काल, और काल बीतने दो, तो वही सुनी हुई पढ़ी हुई बातें कुछ उतरेगी दिमाग में, जो अक्यूमुलेट किया है वो असिमिलेशन होगा, अक्यूमुलेशन से असिमिलेशन होगा, मतलब पहले कंठस्थ से धीरे धीरे फिर हृदयस्थ और हृदयंगम होगा, फिर मतलब ज्ञान से विज्ञान में रूपांतर होगा उसका। तो गुरुजन से सीखो, स्वयं इसको समझने का प्रयास करो, पुनः पढ़ो, अपने मित्रों की, भक्त मित्रों की सहायता लो, और थोड़ा धीरज धरो। टाइम विल टेल यू द डिफरेंस, कहते हैं समय के दौरान में कुछ बातों का खुलासा होगा, कुछ साक्षात्कार होगा, कुछ और आपने गीता को खरीद लिया तो आपके मन में तो कुछ इच्छा तो जगी है, तो भगवान उसको भी नोट करेंगे कि मुझे जानना चाहता है, मेरे संदेश को जानना चाहता है, तो भगवान ऐसी कुछ पार्श्व भूमि, कुछ मंच बनाएंगे आपके हृदय में, मन में, ताकि आप उनको समझ सकते हो। और अपना थोड़ा समय भी बिता रहे हो, भगवद गीता को जानने का कोई प्रयास करता है मतलब उतना समय आपने इन्वेस्ट किया, और उस समय तो आप और कुछ नहीं कर रहे, जब गीता पढ़ रहे हो तो गीता ही पढ़ रहे हो आप, और तो कुछ नहीं कर रहे, और भी कुछ कर सकते थे, दुनियादारी या कई फालतू या जो भी, लेकिन उस समय तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस गीता के साथ बैठे हो, मानो भगवान के साथ ही बैठे हो, और जानने की इच्छा रखते हो, और इच्छा जैसे अधिक अधिक तीव्र होती जाएगी तो भगवान भी प्रकट होंगे। तो ये ज्ञान, गीता का जो ज्ञान है, इसके बिना तो जीवन बड़ा खतरनाक है, सो डेंजरस। तो ज्ञान प्राप्त करना है इस छंदांसी यश परणाणी, और भगवान इसी अध्याय में आगे कह रहे हैं, कहाँ है, असंग शस्त्रेन दृढ़ेन छित्वा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़मूलम, असंग शस्त्रेन दृढ़ेन छित्वा। तो इस अश्वत्थ की, जो अश्वत्थ वृक्ष है, इसके जो मूल है एक तो ऊर्ध्वम कहा मूल ऊपर की ओर और वो भगवान भी है या मूल है भी, तो सुविरूढ़ मूलम गहराई में गहरे हैं मूल। अब जानते हो जितना वृक्ष ऊपर होता है उतनी उसकी सारी जड़ें जड़ उसके जड़ से उपज उसकी शाखा उपशाखा जमीन में फैली रहती है। कभी कभी जल प्राप्त करने के लिए आधा आधा मील दूर तक जड़ पहुंच जाती है। कहां मिलता है? पादप। कि वृक्ष क्या करते हैं? पैर से पीते हैं। पादप इसलिए वृक्ष को कहा पादप पीने वाला। कैसे पीता है? पैर से पीता है, जड़ से पीता है पानी, इसलिए पादप। तो सुविरूढ़ मूलम इसकी जड़ जो है डीप बड़ी गहरी है और एक नहीं कई सारे हैं। तो हम तो ऐसे चलते फिरते घूमते हैं लेकिन हम वैसे बंधन में है, बंधे हैं हम। तो करना क्या है? छंदाम से यश परणानी जो वेदों का जो ज्ञान है वो कहता है क्या करे? इसको काटो, ये संसार एक बंधन है, संसारी बंधन है। आशा पाश शतैर बद्धई का आशा पाश शतैर बद्धे भगवान गीता में कहे बद्ध हो तुम। कैसे बद्ध हो? आशा पाश शतई आशा के पाश है, आशा के पाश डोरिया और कितने हैं? शतई आशा पाश शतईर बद्धई और काम क्रोध परायण और इस संसार के जो बद्ध जीव है परायण है कुशल भी है या रमे हुए किसमें? काम क्रोध परायण, काम में बड़े परायण है, क्रोध में परायण है, काम क्रोध। तो यहां भगवान कह रहे पहले तो संसार का किंचित सा ज्ञान दिया और संसार के साथ जो उसी के साथ जो छंदांसी यश परणानी ज्ञान है उसका स्मरण दिलाया, फिर ज्ञान भी दिलाया भगवान ने गीता के रूप में अन्य शास्त्रों के रूप में। वही संसार, तो संसार है, संसार के संबंधित ज्ञान है, धर्मशास्त्र है और उसमें क्या कहा है आदि, तो उपदेश क्या है? असंग शस्त्रेन दृढ़ेन छित्वा काट लो, काट लो बंधन को काटो। कैसे? शस्त्र लो, शस्त्र से काटना है तो कोई शस्त्र चाहिए, तो कैसा शस्त्र? असंग शस्त्रेन। असंग शस्त्र कौन सा है? कोई मिलता है बाजार में? बाजार में तो कई सारे शस्त्र मिलते हैं, बंदूक भी मिलती है आजकल। अब बाजार में जाके आप बंदूक राइफल खरीद सकते हो, टॉय गन भी कहते हैं। कैसी गन? टॉय, टॉय के रूप में। और तो यहां जो शस्त्र कहा है असंग शस्त्र है ना, कैसा शस्त्र? सुनिए कैसा शस्त्र कहा? असंग शस्त्र, मतलब संग नहीं, असंग मतलब संग नहीं। असंग अनासक्ति, वैराग्य, ज्ञान वैराग्य, दोनों की मदद है, ज्ञान वैराग्य। भक्ति के ये दो पुत्र भी है। भक्ति के दो पुत्र कौन से हैं? ये ज्ञान है, वैराग्य है, जैसे ये दो लेटे हुए, वे भी एक समय लेटे थे, ज्ञान और वैराग्य जब नहीं रहा या कुछ मात्रा कम हुई तो ज्ञान वैराग्य लेट गए। उसकी जो मम्मी थी भक्ति देवी, बड़ी चिंतित हो गई। मां तो ठीक थी लेकिन ज्ञान वैराग्य तो लेट के कांप रहे थे। व्हाट टू डू, तो नारद मुनि वहां से जा रहे थे तो पुकारा, ओ स्वामी जी। तो फिर जब भागवत कथा सुनी, मुश्किल से फिर ये भक्ति देवी ले आई अपने दो पुत्रों को, ज्ञान वैराग्य को उठा के हरिद्वार पहुंच गई। फिर चार कुमारों ने वहां गंगा के तट पर भागवत कथा सुनाई, तो कथा के अंत अंत में फिर ज्ञान वैराग्य ऐसे नाचने लगे। लेटे थे, कांप रहे थे, उठना मुश्किल था, आंखें भी नहीं खुल रही थी, कुछ आखिरी सांस ही चल रही थी, लेकिन किंतु जब भागवत की कथा का श्रवण हुआ तो जान में जान और जोश और से जवान ऐसे उठे और ऐसे कीर्तन और नृत्य करने लगे। तो ज्ञान और वैराग्य, भक्ति ज्ञान वैराग्य। तो असंग शस्त्र ही न, असंग नाम का जो शस्त्र वैराग्य, सिंपल लिविंग फिर कह सकते हैं, हाई थिंकिंग ज्ञान है, ज्ञान है हाई थिंकिंग, उच्च विचार, और सिंपल लिविंग मतलब वैराग्य का जीवन, असंग का जीवन, संग संग अनासक्ति का जीवन, अनासक्त। सुदामा तो पहले सुदामा कुटीर में रहते थे, फिर सुदामा का महल हो गया, लेकिन मंगल आरती में आना छोड़ा नहीं था उन्होंने। पहले तो कुटीर में थे, और कुटीर में लेटे लेटे उनको कई सारे स्टार्स आकाश में दिखाई देते थे, मतलब मल्टी स्टार अकोमोडेशंस थे पहले उनके। वो जो छत था उनके कुटी का, इसमें कई सारे छिद्र छेद थे, तो लेटे लेटे वो देखते छत के ऊपर वाले जो आकाश वाले जो स्टार्स, तो अकोमोडेशन किस कितने स्टार वाला था, मल्टी स्टार, कई मैनी स्टार्स, लेकिन आराम से लेट जाता है। बाद में जब द्वारका से लौटे तो वहां तो द्वारका पुरी जैसा ही वैभव प्राप्त हुआ। तो पहले भी 6 घंटे सोते थे, अब उन्होंने कुछ बढ़ाया नहीं, ठीक 4 बजे उठ जाते, मंगल आरती होती उनकी। तो उनका जो जीवन साधना भक्ति भाव पहले जैसा ही, कोई फर्क नहीं, अनासक्त। कुछ है नहीं तो फिर अनासक्ति का प्रदर्शन करना तो कठिन नहीं है, कुछ है ही नहीं, लेकिन सारा होते हुए भी अनासक्त रहना, वैराग्य का जीवन, सिंपल लिविंग, वहां परीक्षा है। तो असंग शास्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, तो कुल्हाड़ी ले लो, असंग की वैराग्य की कुल्हाड़ी साथ में लेके, उस जो जड़ है इस प्रकार भगवान इस अध्याय में कितना सारा ज्ञान देते हैं। मेरा जगत भी है कहते, मेरा धाम भी है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक, फिर आमंत्रित करते हैं मेरे धाम में आओ, मेरे धाम में आओ। कैसा है धाम मेरा? न तद भासयते, और सूर्य चंद्रमा अग्नि की आवश्यकता नहीं है। स्वयं प्रकाशित है वो जगत, विमूढ़ नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। तो विमूढ़ जो है उनको दिखाई नहीं देता, मूर्खों को नहीं दिखाई देता। ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान का चश्मा पहने हुए, गीता का चश्मा पहने हुए व्यक्तियों को पश्यन्ति दिखाई देगा। अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। इतना भी हमको पता नहीं है भगवान। अहम वैश्वान, मैं, हमने भोजन तो कर लिया, हर बात पर के लिए हमें भगवान पर निर्भर रहना पड़ता है। बस हमको यज्ञ करना है, यज्ञ करो तो यज्ञात भवती पर्जन्य, वर्षा होगी, वर्षा होगी तो अन्न होगा, अन्नाद भवती पर्जन्य, पर्जन्याद अन्न संभवा। तो अन्न प्राप्ति के लिए भगवान पर निर्भर रहना पड़ेगा। फिर अन्न को हमने खा लिया तो उसको हजम करने के लिए भी भगवान पर निर्भर रहना होता है। इस प्रकार हम लोग कृष्ण कॉन्शियस बन सकते हैं, भगवान हमारे कितना सारा करते हैं। तो मैं वैश्वानर अग्नि, जठराग्नि जो है वो भगवान का स्वरूप है। भगवान वैश्वानरम भूत्वा देह में प्रवेश करते हैं, प्राणापान समायुक्ता, और शरीर में कई सारे वायु है, उदान अपान व्यान समान प्राण, पांच पांच वायु है, ऊपर की ओर ऐसे चलते रहते हैं। उसका जब संतुलन होता है प्राणापान समायुक्ता, फिर पचाम्यन्नम चतुर्विधम, चार प्रकार का भोजन आप लोग जो खाते हो, इसको मैं, इसका जो हजम करना है पाचन, पचामी पचन मैं करता हूं। तो चार प्रकार के भोजन है, भक्षम भोज्यम लेह्यम चोष्यम इति चतुर्विधम अन्नम पचामी, चार प्रकार का भोजन का। तत्र यद् दन्तै अवखंड्य अवखंड्य भक्षते अपुपादी तद् भक्षम्। दांतों की मदद से, दन्तै दांतों की मदद से अवखंड्य अवखंड्य, उसको काट काट के टुकड़े टुकड़े करते हैं, पीसते हैं जब भोजन को, तो वो हुआ भक्षम। चतुर्विधा में से एक भोजन कैसा है, भक्षम कहा है। अपुपादि से पूड़ी इत्यादि, पूड़ी इत्यादि को जब आप खाते हो दांतों का उपयोग अधिक होता है। दूसरा है भोज्यम, यत्तु केवलम जिह्वया विलोड्य निर्गीयते पायसादि तद भोज्यम। इसमें अधिक जिह्वा का उपयोग हो, जिह्वा बड़ी सक्रिय रहती है भोजन के समय, तो पायस आदि, पायस पायसान्न दक्षिण भारत में चलता रहता है, किसी प्रकार की खीर इत्यादि, इसमें ज्यादा दांतों का उपयोग नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा अन्न होता है लेकिन पेय अधिक होता है, जिह्वा का अधिक उपयोग होता है। इसको हम या तो चाटते हैं या जिह्वा से अंदर, और फिर निर्गीय तो उसको गलते हैं हम लोग, स्वॉलोड, तो वह उसको भोज्यम कहा है। फिर लेह्यम, यत्तु जिह्वायाम निक्षिप्य रसास्वादेन क्रमशः निर्गीयते द्रवीभूतम गुड़ादि तद लेह्यम। जैसे गुड़ इत्यादि पदार्थ जब हम खाते हैं तो वह जिह्वा पर रखते हैं, जिह्वा को ज्यादा, भक्षम में दांतों का उपयोग था, भोजन में जिह्वा का उपयोग, और जिह्वा का बहुत उपयोग, अंदर उसका हिलना डुलना खूब चलता है। लेकिन जब लेह्यम है, ऐसे ये अवलेह, ये च्यवनप्राश और भी कुछ लेह लेह्यम, तो उसको चाटते हैं, उसको चखते हैं, क्रमशः थोड़ा थोड़ा गलना होता है। द्रवीभूतम, तो ये लेह्यम कहा है। और यत्तु दंष्ट्रादि भी निष्पिड्य रस अंशम निर्गीय अवशिष्टम त्यज्यते चक्षुदंडादि इक्षुदंडादि तद चोष्यम। जैसे हम गन्ना खाते हैं तो उसको दांतों से तो तोड़ते हैं, फिर उसको जूस निकालते हैं, और उसका थोता जो है उसको थूकते हैं, और रस को इसको पी लिया लिक्विड, और ले ही इतना, वो द्रवी द्रव तो होता है लेकिन इतना नहीं होता जिससे, जैसे ये चोष्यम है, तो इक्षुदंड आदि, तो उसको हम लोग खा लेते पी लेते हैं कर लेते हैं, उसको उसको चोष्यम का। तो चतुर्विधम पचामी अन्नम, तो हमको तो पता भी नहीं चार प्रकार के आसन, नाम तो हमने सुने होते हैं या, लेकिन चार प्रकार के अन्न होते हैं, इसको कैसे कैसे, उसके नाम क्या है, क्या कौन से अवयवों का उपयोग होता है, ये चलता है बाय नेचर, निसर्ग से चलता रहता है, कलते हैं फिर, तो पेट में तो पहुंच गया तो उस वो जो रस है, रस से जो रक्त बनता है, फिर रक्त से मांस बनता है, मांस से फिर हड्डियां, फिर मज्जा, फिर वीर्य, ये अलग अलग सात धातु है, इसको बनाने का कौन, आप जानते हो सब, आप स्वयं ही करते हैं सब प्रोडक्शन, इसमें सारे शरीर में फैक्ट्री चलती रहती है, आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है, खा लिया सो लिए सब चलता रहता है, हमारे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, निसर्ग है, उसके पीछे मयाध्यक्ष न प्रकृति सूयते स चराचर है। हम कुछ नहीं करते, लिवर फंक्शन, हार्ट फंक्शन, किडनी फंक्शन, कईयों को पता भी नहीं कि शरीर में किडनी होती है, और होती है तो कहां होती है। मेरे मम्मी को पता नहीं था कि लिवर होती है शरीर में, लिवर के क्या फंक्शन होते हैं, जीरो नॉलेज। वो पार्ट है कि नहीं ये पता नहीं है, तो फिर उसके सारे फंक्शंस, कौन सा जूस कितनी मात्रा में निकालना है, उसको कैसे मिलाना है और रसों के साथ, और फिर उस रस से रक्त कैसे बनाना है। आप रक्त बना सकते हो? रक्त जिन वस्तुओं का बना हुआ है, पदार्थों से बनता है, वो सारे पदार्थ आपको दे दिया, आप रक्त बना सकते हो? एक बूंद बना सकते हो? हाँ, नहीं बना सकते। हमको भी आज चोट लगी एक समय, फ्यू इयर्स, कुछ साल पहले, तो हमने क्या किया, वो तो हम डॉक्टर के पास तो गए, लेकिन 10 मिनट में या थोड़े समय उन्होंने कुछ ऊपर से मलम पट्टी स्टिचेस लगा दिए, क्या जाओ। तो अंदर से मैं सोच रहा था, वैसे डॉक्टर के हम अस्पताल में जा रहे थे, रास्ते में रिपेयरिंग अंदर से शुरू हुआ था, उसका जो रिपेयरिंग, उसका जो भी सुधार होना था, वो तो प्रोसेस शुरू हो गई, सेल्फ हीलिंग वगैरह। मुझे पता नहीं था कैसे, फर्स्ट टाइम एवर, इसका कोई अभ्यास तो नहीं था कि एक्सीडेंट जब होता है तो फिर क्या करना, कैसे उसको अंदर से कैसे फिर पुनः मांस वहां भर देना, ऊपर से कैसे चमड़ी को, त्वचा को पैचअप करना, सिलाना। किसी का आप स्टडी करते हो क्या, स्वयं को क्या करना? हमें तो कुछ नहीं करना होता, डॉक्टर तो थोड़ा ही कुछ करते हैं, नॉट मच, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करते, लेकिन सारा हीलिंग होता है कैसे, ये सब प्रकृति है, ऐसी व्यवस्था है, ये संसार इस प्रकार कंप्लीट है, पूर्ण है, और उसके पीछे भगवान है, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचर। ऐसे भगवान की कृपा ही, ये कृपा प्रसाद ही है भगवत गीता, इसको सदैव साथ में रखना चाहिए, इस मैन्युअल है, इस संसार के साथ हमको कुछ व्यवहार करना है, तो कैसे करे, तो एक हाथ में ग्रंथ होना चाहिए, फिर उसके अनुसार हम कार्य कर सकते हैं। इसको बंद करके तो फिर हम फंसेंगे। तो गीता, गीता अमृतम महत, गीता अमृत महान है, जो भी इसका पान करेगा पुनर्जन्म न विद्यते, असंग शस्त्रेन दृढ़ेन चित्वा। ये गीता ज्ञान भी सिखाती है और वैराग्य का ज्ञान, वैराग्य। तो ऐसे भगवान एक समय मुरली बजा रहे थे, तो मोरों ने समझा कि कोई बादल है, बादल, कृष्ण
कृष्ण का अंग कैसा है?
श्याम, घन श्याम।
तो कृष्ण बादल जैसे और उनका मुरली का नाद, तो मयूर सोच रहे थे कि ये बादल जो है ये गर्जना कर रहा है,
भगवान के जो श्याम वर्ण ने उनको याद दिलाया बादल का, भगवान की मुरली के नाद का श्रवण से बादल की गर्जना सोच रहे, मोर नाचने लगे। जब वर्षा होती है, गर्जना होती है बादलों की, तो मोर क्या करते हैं? मूड में आते हैं, डांसिंग स्टार्टेड डांसिंग। और उस नृत्य को देख रहे थे कई सारे चर अचर पशु और पक्षी, भुजंग आदि सर्प भी देख रहे थे। सर्प का और मयूर का जमता नहीं है, लेकिन यहां मयूर के नृत्य को सर्प भी देख रहे थे। फिर मयूर ने वैसे जान लिया, ये बादल तो नहीं, तो साक्षात कृष्ण है, और ये गर्जना तो नहीं बादलों के, तो भगवान के मुरली की नाद है। तो फिर मयूरों ने कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, आप हमें नचाइए, आप हमें नचाइए। तो भगवान वो असंख्य मयूरों के मध्य में भगवान आए और मुरली वादन। तो मंडली भूय, तो सभी मयूरों ने अलग अलग समूह में हो गए। डांसिंग जब होता है तो ग्रुप में डांसिंग, तो आप भी जब हरिहराय नमः कृष्ण कहते ही आप क्या करते हो? बिखरे हुए आप क्या करते हो? पंक्ति बनाते हो, या माता ऐसे गोल गोल उनका मंडली भू या मंडल बनता है। उनको छोटा मंडल यहां कुछ भक्तों का आज था, तो बड़ी मंडली वहां थी, तो सारे फैले हुए मयूर भगवान के मुरली के नाद को सुनते ही अलग अलग कोरियोग्राफी, कहते हैं डांसिंग में कोरियोग्राफी चलती है, सभी ने अलग अलग समूह बना लिए। और भगवान इस समय केवल सनृत्यम वेणुवादनम कहा, वेणु वादन, वादन कैसे? सनृत्यम, नृत्य के साथ भगवान भी नृत्य करने लगे। उन्होंने मयूरों से प्रेरणा प्राप्त किए, स्फूर्ति प्राप्त किए, मयूरों के मध्य में सारे मयूर नृत्य करे, भगवान मध्य में नृत्य भी करने लगे, वेणु वादन भी करने लगे। तो मयूर इतने प्रसन्न हो गए, बेहद खुश हो गए भगवान के नृत्य से, और सोचने लगे कितना अच्छा कलाकार है ये, सच ए नाइस डांसर। तो कुछ उनको न्योछावर करना चाहिए, कुछ पुरस्कार देना चाहिए इस डांसर को, ऐसा सोच के मयूरों ने, मयूरों के पास क्या होता है? अपने पंख ही होते हैं। तो मयूरों ने क्या शुरू किया? पंख को देना शुरू किया, पंख को हिलाए होंगे अपने, कुछ मयूर पंख नीचे गिरने लगे। तो जैसे परिपाटी होती है, गांव में कलाकार आता है, कोई बजाता है ढोलकी बजाता है, कभी कभी वो वानर को भी लेके आता है, नचाता है, तो कलाकार वानर का खेल देख के सभी ताली पीटते हैं, कुछ पैसे भी फेंकते हैं, तो फिर वो या तो मदारी, वो वानर का मालिक या वानर स्वयं ही उसको क्या करता है? उसको उठा लेता है, जो भी बख्शीश मिला है उसको पुरस्कार। तो भगवान श्री कृष्ण भी, उन्होंने सोचा कि ये सब मुझे पुरस्कार दे रहे, तो परिपाटी उसको लेना चाहिए, तो भगवान भी उसको उठाने लगे मयूरों को, और मयूर के पंखों को पुच्छों को उठा उठा के अपने पगड़ी में धारण करने लगे। भगवान पगड़ी में धारण किए सारे मयूरों के अलग अलग पुच्छ। और फिर पुनः और अधिक उत्साह के साथ भगवान ने और नृत्य किया और वेणुनाद। अपने धाम में यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो भगवान अपने धाम में नित्य लीला का दर्शन प्रदर्शन करते हैं और भगवद गीता एक इनविटेशन है, आमंत्रण है, प्लीज कम बैक होम, लौटो वापिस आओ। इस प्रकार का दृश्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आपकी इस एडवर्टीजमेंट के ऊपर लिखा है, इस एडवर्टीजमेंट, ये शास्त्र है, शास्त्र में जो वर्णन है, वृंदावन का वर्णन या भगवान के सौंदर्य का वर्णन, जो एक्टर है, जो डांसर है, परफॉर्मर है, तो जैसे एडवर्टीजमेंट में होता है, यहां आओ वहां आओ, पेरिस जाओ, काठमांडू जाओ, ये शो वो शो, वहां वहां का दृश्य देखो, निसर्ग देखो, वहां का कलाकारी देखो, फिर लोग दौड़ते हैं, तद्वत ये गीता भागवत में जो वर्णन है, आध्यात्मिक जगत का वर्णन है, वहां के व्यक्तियों का, साक्षात फिर भगवान का और भगवान के सारे लीलाओं का, ये एक प्रकार की विज्ञापना एडवर्टीजमेंट है, ताकि इससे हम आकर्षित होके, जैसे हम लोग मन बना लेते हैं, कोई पढ़ लेते हैं, ये लो पेज, इसमें इसको खरीद लो, उसको गले लगाओ, उसे करो वो करो, उसको खाओ सूंघो, इसको देखो, हम लोग मन में चाह ये सिर्फ देखना चाहिए, हम जाएंगे फिर तो वह तो भगवान का इनविटेशन है अपने ही जीवों को, अपने ही ममई वंशों, अपने ही अंशों को, अंशी भगवान हमको आमंत्रित कर रहे हैं, प्लीज कम बैक होम। तो मामेकम शरणम व्रज, उन्होंने कहा, तो ये जो संदेश है, ये जो विज्ञापन है, इसको हम और एडवर्टाइज करना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, इसीलिए ये गीता मैराथन है, गीता का वितरण का समय है। कौन सा समय? गीता जयंती, एक दिन ही नहीं, एक पूरे महीने के लिए गीता जयंती का उत्सव हम मनाते हैं और गीता का वितरण करते हैं संसार के सभी नगरों में, लगभग जहां जहां इस्कॉन है, इस्कॉन की स्थापना है, वहां भक्त व्यस्त है भगवत गीता के वितरण में। हम जहां भी जाते हैं, हम पुणे गए तो वहां ऑलरेडी दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड 15,000 भगवद गीता, और दिल्ली का तो क्या पूछा, क्या कहा जाए, तो उनके बड़े बड़े टारगेट्स होते हैं, 2 लाख गीता, 2.5 लाख गीता, तो प्रोग्रेस कर रहे हैं। नोएडा में भी 11,000 गीता टारगेट है, तर आगे बढ़ रहे हैं। पंडरपुर आल्सो ट्रैवलिंग पार्टी डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स। तो यहां के भी कुछ स्कोर सुने हमने आज, भगवान को सुनाए प्रसन्नता के लिए, और भी प्रसन्न होंगे भगवान, उनका संदेश जो औरों के पास पहुंचाता है उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, वो प्रिय बनता है, वो भक्त भगवान को प्रिय होता है। वह तो नाकमूर भी पीछे नहीं होना चाहिए, आगे होना चाहिए। इंपॉर्टेंट सिटी सेंट्रल इंडिया का। तो आप भी मैदान में उतरो, केवल मंदिर के भक्त नहीं, कांग्रेगेशन भी। इस्कॉन यूथ फोरम नोएडा ने 3000 गीता का संकल्प लिया है, 3000 गीतास इन नोएडा इस्कॉन यूथ फोरम। एंड ये जो 11000 जो नोएडा में उन्हें संकल्प, उनका 5000 टेम्पल डिवोटीज, 3000 IYF और कितना हो गया फिर द बैलेंस 3000 कांग्रेगेशन, 3000 भगवत गीतास। सो दे आर, उनका प्रयास हो रहा है 11000 भगवत गीता का वितरण का। तो आप भी तो योजना बनाओ, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स भगवत गीता, राइट। हाँ
गोपीनाथ प्रभु है नहीं, यहाँ भी हो जाएगा।
जाना है कह तो हम लोग यहाँ रुकते हैं और फिर गीता जयंती महोत्सव की जय।
लोकनाथ महाराज की जय।